बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 20 अक्टूबर, दिन शनिवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने हर उम्र की महिलाओं के लिए सबरीमला मंदिर के द्वार खोले, लेकिन पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी कर रही हैं इसका विरोध। क्या महिलाओं का ये विरोध स्वयं महिलाओं के हित में है? यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। क्या सोचते हैं आप? रखें अपनी बात तर्कों के साथ। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-2-7001। चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार कल्याणी शंकर, लेकिन थोड़ा ठहरेंगे और सुनेंगे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कुलदीप मिश्र से। पंजाब के अमृतसर हादसे में कम 59 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक रेलवे ट्रैक के पास हो रहे रावण दहन को सैकड़ों की संख्या में लोग रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर देख रहे थे और उन्हें अचानक आई ट्रेन का पता ही नहीं लगा। 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। चश्मदीदों का कहना है कि रावण दहन के दौरान पटाखों की आवाज के चलते उन्हें ट्रेन के आने का पता नहीं लगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मामले की मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दिए हैं। जहां तक प्रदेश सरकार की बात है, हम पूरी तरह अलर्ट पर हैं। हमारे प्रशासन के सभी जरूरी लोग अमृतसर में हैं। सारे घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, चाहे वे सरकारी अस्पताल हों या निजी। सरकार इसका पूरा खर्च उठाएगी। हमने घटना की वजह के संबंध में जांच का ऐलान कर दिया है। ये थे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के शब्द। हादसे से आक्रोशित लोगों ने घटनास्थल पर सुरक्षा इंतजामों के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उत्तरी रेलवे के पीआरओ दीपक कुमार का कहना है कि रेलवे की ओर से सभी इंतजाम किए गए थे।
ये ट्रेन पास करने के लिए इसमें एक लेवल क्रॉसिंग गेट है जो कि बंद कर दिया गया था। इसका मतलब ये है कि रेलवे ने पूरा एहतियात लिया था कि ये गेट बंद रहे और जब ये ट्रेन निकले तो ये गेट बंद हो ताकि किसी भी तरह का नुकसान ना हो सके। चूंकि ये घटना दूसरी तरफ हुई है जहाँ पे पुतला जब नीचे गिरा, पटाखे चले, उसकी आवाज़ से डर के कुछ हड़बड़ी में लोग जो है उस तरफ ट्रैक की तरफ बढ़े हैं जिसमें ये हादसा हुआ।
ये थे उत्तरी रेलवे के पीआरओ दीपक कुमार के शब्द। घटना की चश्मदीद सुमन ने ये बताया।
ट्रैक ते लाइन वाइज काफी दुनिया सी, इतनी की तादार ची दुनिया सी की यही
उस ट्रैक पर लाइन से इतनी संख्या में लोग खड़े थे कि आप उनकी गिनती नहीं कर सकते। गाड़ी आई, उसकी आवाज का कुछ पता ही नहीं लगा और कुछ सेकंडों में जैसे कागज उड़ते हैं वैसे वह लोगों को उड़ाती ले गई। ये थे चश्मदीद सुमन के शब्द। दो हफ्तों से जारी विरोधाभासी बयानों के बाद सऊदी अरब ने स्वीकार किया है कि पत्रकार जमाल खाशोजी इस्तांबुल के सऊदी दूतावास में मारे गए। सऊदी अरब ने कहा है कि वो एक संघर्ष में मारे गए। उनके शव का क्या हुआ इस पर कोई बयान नहीं दिया गया है। इससे पहले सऊदी अरब दावा कर रहा था कि खाशोजी वाणिज्य दूतावास से सुरक्षित बाहर निकल गए थे। सरकारी मीडिया ने बताया है कि सऊदी अरब ने अपने दो वरिष्ठ अधिकारियों को पद से हटा दिया है। तुर्की की ओर से शुरू से ही आरोप लगाया जा रहा था कि खाशोजी की दूतावास के भीतर हत्या कर दी गई और उनके शव को ठिकाने लगा दिया गया। लंदन स्थित समाचार संस्थान मिडल ईस्ट आई के संपादक डेविड हर्स्ट का कहना है कि सऊदी अरब की ओर से बताया गया घटना का संस्करण ऑडियो टेप से मेल नहीं खाता है। उन्होंने कहा,
This is not a credible explanation for what happened.
जो कुछ हुआ ये उसका विश्वसनीय ब्यौरा नहीं है। अब ये होगा कि तुर्की के अभियोजक अपनी रिपोर्ट लिखेंगे, उस रिपोर्ट में ऑडियो टेप के सबूत होंगे जिसके बारे में मुझे और दूसरे पत्रकारों को बताया गया है। उसमें और भी सबूत होंगे, सिर्फ ऑडियो टेप ही इकलौता सबूत नहीं है, वहाँ गवाह भी थे। ये थे मिडल ईस्ट आई के संपादक डेविड हर्स्ट के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दुनिया के प्रतिष्ठित जलवायु विशेषज्ञ राजेंद्र के पचौरी को भारत में अब यौन उत्पीड़न के एक मामले में अदालती मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। 78 वर्षीय पचौरी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल के प्रमुख थे, लेकिन दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट की महिला शोधकर्ता की ओर से यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए जाने के बाद उन्हें 2015 में पद छोड़ना पड़ा था। उन्होंने आरोपों से इनकार किया है और अपनी उम्र का हवाला देते हुए शीघ्र ट्रायल की मांग की है। अफगानिस्तान में आज आम चुनावों के मतदान के दौरान कई जगहों पर मतदान केंद्रों को निशाना बनाकर धमाके किए गए। अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कई जगहों पर तालिबानी चरमपंथी सड़कों को अवरुद्ध कर रहे हैं। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में, मेरा नाम है संदीप सोनी। चर्चा का विषय आप जानते हैं, नोट कीजिए, हमारे टोल फ्री नंबर 1811-7000 और 1811-7001। स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार कल्याणी शंकर, स्वागत है आपका।
शुक्रिया।
और स्वागत दुनिया भर में सुन रहे हमारे तमाम श्रोताओं का। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ पूजा पाठ की ये आवाज आ रही है केरल के सबरीमला मंदिर से। केरल का सबरीमला मंदिर, जहां भगवान शिव और भगवान विष्णु के नारी रूप मोहिनी के पुत्र भगवान अय्यप्पा विराजमान हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में जाने से रोका जा रहा है। जैसा कि ये महिला श्रद्धालु कह रही थी कि केरल में 99% से ज़्यादा महिलाएं नहीं चाहती कि हर उम्र की महिलाओं को सबरीमला मंदिर में जाने दिया जाए। मुट्ठी भर महिलाएं हैं जो इस परंपरा को नष्ट कर देना चाहती हैं।
We should not enter. We are against the Supreme Court orders. This will not be accepted by all the Hindus of our country.
ये एक और बच्ची की आवाज़ केरल से, जो कह रही थी कि हमें मंदिर में नहीं जाना चाहिए, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं, हमारे देश के हिंदू इसे स्वीकार नहीं करेंगे। चर्चा में श्रोताओं को शामिल करेंगे जल्दी, उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार कल्याणी शंकर आपकी राय जानना चाहेंगे। सबरीमला में महिलाएं महिलाओं का विरोध कर रही हैं, इसकी क्या वजह देखती हैं आप?
मैं ये नहीं मानूंगी कि महिला महिलाओं को विरोध कर रही हैं। जैसा आपने सुना वो लड़की की आवाज़, तो 99% तो ये नहीं चाहते हैं। तो ये हिंदू संस्कार हैं, हिंदू विमन वहाँ का औरतों को वो बचपन से भी यही सिखा के आया कि आप वो फर्टिलिटी जो टाइम है उस समय मंदिर नहीं जाना चाहिए। फिर जैसा पीरियड आता है तभी भी कोई औरत साउथ में नॉर्थ में भी मंदिर नहीं जाते, तो उसी तरफ से ये भी हो रही है, कुछ सालों से हो रही है, ट्रेडिशन है। तो अभी ये हो गया कि कोर्ट का इंटरवेंशन हो गया। कोर्ट का इंटरवेंशन ये करना कि नहीं, वही बहुत बड़ी सवाल है। वो बेसिक सवाल वही है, कोर्ट क्यों ये फेथ जो फेथ होता है उसमें इंटरफेयर करना। फेथ तो आप जानते हैं कि आप ये जैसे आप बोल रहे थे, तो ये पानी है, ये पानी हमको लगता है कि ये पानी नहीं है, ये जहर है, बोले से हमको मन में जहर रहेगा, आपको ये पानी है लगने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही वो फेथ के मामला है, इस वजह से कोर्ट को इसमें जाना ही नहीं चाहिए।
यदि महिलाएं महिलाओं का विरोध नहीं कर रही जैसा कि आप कह रही थी, यदि हम इसको मान भी लें, लेकिन क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि महिलाओं का एक हिस्सा ऐसा है जो बाकी महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों को हासिल करने से रोक रहा है? इससे तो इनकार नहीं करेंगी आप?
नहीं, इससे मैं इनकार नहीं करूंगी, लेकिन ये एक बात है इसमें, देखिए जरा हज़ारों अयप्पन टेम्पल हैं पूरा कंट्री में, तो एक सबरीमला एक है, उसमें आप मत जाइए, बाकी हर जगह जाइए। अभी कोर्ट ने फैसला किया कि वो हाजी वो दरगाह में औरतें जा सकते हैं, कितने लोग जा रहे हैं। शनि भगवान का मंदिर में कोर्ट ने फैसला किया कि विमन जा सकते हैं, औरतें कितने औरत जा रही, तो इस वजह से वो कोर्ट का ये मामला होने से ये नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का अभी तक देखिए, मथुरा में उनका जो आदेश अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो तमिलनाडु में हुआ कि जल्लीकट्टू को लेके, वो रूरल स्पोर्ट है उसको लेके इतना बड़ा हंगामा हुआ। अल्टीमेटली क्या हुआ, जो लोगों का मन में जो था वही जीता। इस वजह से इधर भी यही जीतेगी, अभी आप देखते रहिए थोड़ा दिन में क्या होता है।
शीशे के उस पार बैठे मेरे सहयोगी कपिल देव सिंह इशारा कर रहे हैं कि श्रोताओं से बात कीजिए। आइए सुनते हैं इंडिया बोल में आज पहले श्रोता कौन है हमारे साथ। हेलो।
हेलो
जी, कौन है हमारे आज पहले श्रोता?
नमस्कार, मैं दिल्ली से रेशमी बोल रही हूँ।
रेशमी जी बहुत स्वागत है आपका। ये जो चर्चा हम कर रहे हैं आज इंडिया बोल में, आपको क्या लगता है जब सबरीमला मामले की चर्चा होती है, पहली प्रतिक्रिया पहला रिएक्शन आपके दिमाग में क्या आता है, क्या सोचती हैं आप?
देखिए मेरा एक सवाल है, हर संप्रदाय और मंदिर का अपना रीति रिवाज एवं परंपरा होती है जिनके लंबे समय से पालन हो रहा है। धर्म और राजनीति अलग रखना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? मैडम शंकर,
मैं तो बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, पॉलिटिक्स इसमें बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप माने ना माने इसमें पॉलिटिक्स आ गया है। अब देखिए केरल में अभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों इसके जो इसके खिलाफ हो गया, वो जजमेंट के खिलाफ अभी वो सड़क में आ गए, वहाँ पर इतना ज़्यादा हंगामा कर रहे हैं, ये पॉलिटिकली हो गया। इस वजह से पॉलिटिक्स को दूर रखो, रिलीजन को दूर रखो, रिलीजन को अलग रखो, तभी आपका ठीक हो जाएगा।
अच्छा, ये प्रो और एंटी प्रोटेस्ट बहुत ही नाजुक हो गई है आजकल, क्या इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है?
एजेंडा तो है ही, पहले नहीं होता तो अभी आ गया, तो उनको लगा कि अभी इस वजह से हमको, बीजेपी को लगा कि हमको उधर पैर रखने को भी जगह नहीं मिला, अभी ये इसमें जो औरतों को सपोर्ट करने से हमको वोट मिलेगा, हिंदू का वोट मिलेगा। और कांग्रेस को भी वही लग रहा है कि हम पीछे नहीं रहना चाहिए, हम छोड़ दिया तो बीजेपी इसमें जो जगह मिल रहे हैं उसमें आके वो फ़ायदा उठाएगी, इस वजह से कांग्रेस को भी ये इसमें शामिल हो गया। तो बाकी ओनली वो जो CPIM है, वो उनका ये 30 हैं वो सभी लोग, उनको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर भी उन लोगों को भी चीफ मिनिस्टर को ये मानना पड़ा कि वो जो किए ना किए दोनों उनको नुकसान है, किया तो वो जो इम्प्लीमेंट किया तो उनका प्रॉब्लम ये है कि बाकी हिंदू वोट वो उनको हाथ से चला जाएगा, नहीं किया तो वो दूसरी तरफ ये नुकसान हो जाएगा। इस वजह से इसमें पॉलिटिक्स आप चाहें ना चाहें आ गया।
कल्याणी शंकर जी, राजनीतिक पहलू पर हम अभी और चर्चा करेंगे, बहुत शुक्रिया। पहली कॉलर हमारी रेशमी थी दिल्ली से, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी से अपनी बात रखी और सवाल भी किया गेस्ट से। हम चाहेंगे हमारी जो तमाम श्रोताएं हमें सुन रही हैं वो भी टेलीफोन करें, अपनी बात कहें और कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछें भी। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो,
हेलो
जी,
नमस्कार
जी, नमस्ते,
योगीराज मक्के बोल रहा हूँ जी, मैं डिकोड़ा भोयर जिला वाशिम इधर बसे,
वाशिम महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। आपका एक बार नाम फिर से बताएं, कौन बोल रहे हैं?
मेरा नाम योगीराज मक्के बोल रहा हूँ सर।
योगीराज जी, आराम से रखें अपनी बात, क्या लगता है आपको?
मेरा मानना तो ये है सर जी कि डेमोक्रेसी का मतलब ही हमारे यहाँ समझ में नहीं आया है अब तक लोगों के और पॉलिटिशियनों के।
अच्छा,
डेमोक्रेसी यानी कि सबका अपना अधिकार है, और इसके लिए तो बाबा साहब ने तो बहुत ही बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। ये जो मंदिर प्रवेश की बात जो है सर
जी जी,
हेलो
जी जी, सुन रहे हैं आपको।
इसके लिए बाबा साहब ने बहुत बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था कि भाई मंदिर में जाना सबका अधिकार है, यानी कि समता नाम की कोई चीज है डेमोक्रेसी में, तो इसके लिए ये पॉलिटिक्स वगैरह ये बात छोड़ दीजिए आप। पर देखिए कि वो बात आती है वो मासिक धर्म की बात आती है, तो मासिक धर्म तो वो तो भगवान की देन है, उसके लिए तो कोई नकार ही नहीं सकता। ये विरोध, फिर ये विरोधाभास किस लिए है? धर्म और मंदिर प्रवेश में ये धर्मशास्त्र और ये इस बात में क्यों विरोधाभास है, ये मैं जानना चाहता हूँ।
बहुत शुक्रिया योगी राज जी, बहुत शुक्रिया, आपकी तरह हमारे तमाम श्रोता भी यही जानना चाहते हैं। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार कल्याणी शंकर हमारे साथ स्टूडियो में हैं। कल्याणी जी, जैसे कि ये वाशिम महाराष्ट्र वाले श्रोता योगी राज कह रहे थे कि ये तो लोकतंत्र के विरुद्ध वाली बात हुई ना, लोकतंत्र के आप खिलाफ जाके ये काम कर रहे हैं कि किसी को रोक रहे हैं। समानता का अधिकार तो स्त्री पुरुष धर्म जाति लिंग से परे है, सबको दिया है भारतीय संविधान ने, तो इनकी नज़र में जो संविधान के हिसाब से कह रहे हैं कि संविधान का उल्लंघन है।
यही तो पूरा जो अभी डिस्कशन डिबेट हो रहा है इसी के ऊपर हो रहा है। आपको फेथ को मानना चाहिए, नहीं तो लॉ को मानना चाहिए। इसी वजह से अकॉर्डिंग टू लॉ तो आप हर एक आदमी इक्वल हैं, विमन भी इक्वल हैं, मैन भी इक्वल हैं। उस वजह से वो एक बात अभी उसको लेके डिबेट हो रही है, और मैं उनसे ये सहमत हूँ कि वो सभी को कहीं भी जाने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन वो कैसे आप वो जो ट्रेडिशन जो होता है उसको कैसे खिलाफ जाएंगे? ऑफ कोर्स दलित को तो अभी टेंपल में जाने के लिए, तो उनको मंदिर जाने के लिए तो उनका अधिकार मिला, वो जा
भी
रहे
लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी।
बहुत लंबी लड़ाई है, इसके लिए भी शायद होगा अभी 10-20 साल के बाद ये भी शायद हो सकता है, लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा है कि हो सकता है।
आपको लगता है कि केरल की सरकार ने अपनी तरफ से वो सारी कोशिशें की हैं जो एक सरकारी मशीनरी को करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू करवाने के लिए?
नहीं, मेरा हिसाब से तो इतना नहीं किया। इनको पहले से पता था कि ये बीजेपी और शिवसेना और कांग्रेस इन सब लोग सड़क पर उतरने वाले थे, और इनको पहले से पता था कि ऑर्डर आ गया है। वो 20 दिन उनको टाइम मिला, 20 दिन में तैयारी किया तो ये नहीं होने वाला था।
यानी सरकार के मोर्चे पे कुछ लापरवाही रही है, और सरकार यदि चाहे तो महिलाएं मंदिर में वहां तक पहुंच सकती हैं जहां जाने से उन्हें रोका जा रहा है, सरकार यदि ठान ले।
सरकार ने नहीं लिया, इसलिए उनका वोट बैंक पॉलिटिक्स है। वोट बैंक को इसलिए मैंने पहले भी जैसे जिक्र किया, तो अभी किया तो भी प्रॉब्लम है, ना किया तो भी प्रॉब्लम, इसलिए वो थोड़ा मुसीबत में है।
मुसीबत में है केरल की सरकार। अगले श्रोता के पास चलते हैं हम। कौन श्रोता हमसे जुड़ गए इस समय?
मेरा नाम है सर शंभु शरण।
शंभु शरण जी, हम सही पहचान रहे हैं आपको, आप बनारस से बोल रहे हैं।
हाँ,
बनारस से बोल रहे हैं। शंभु जी, क्या लगता है आपको, ये सबरीमला का मामला किस दिशा में जा रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे?
हमारा सर सबमिशन है कि जो एक जो अभूतपूर्व एक क्या उसको बोलते हैं अवसर आया है, जिसके अंदर की हम बहुत सारी चीजें उस समय इस समय हम सोच सकते हैं। एक तो देखिए कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संविधान दिया है वो एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी का दिया है, और अब सोचिए क्या क्या कि हालांकि ये थोड़ा संदर्भ दूसरा हो जाएगा कि यदि ये अछूतोद्धार एक टाइम में ये कॉन्सेप्ट था कि अछूत जाएंगे तो ये देवता अपवित्र हो जाएंगे, अब वो मतलब ये देश का सौभाग्य था का कि सब सारी चीजें पूर्व में ही और ये सेटल्ड हो गया और इतना बड़ा रिवॉल्यूशन आया
जी।
कि हाँ ये सब चीजें हुई। आज जब ये सुप्रीम कोर्ट ये प्रयास कर रहा है कि ये जो प्रिमिटिव चीजें हैं, जो कंजर्वेटिव से मतलब पारंपरिक चीजें हैं, उनका जो अंधविश्वास पर, अब मैं ये दूसरी बात किया कि वही केरला के अंदर जो मातृत्मक सत्यता सत्या वहाँ एक पितृत्मक सत्या के बदले वहाँ मातृजनक ये नायर लोग मानते हैं, और वहाँ और पूरे हिंदू धर्म में सात संप्रदाय शक्ति के पूजा करते हैं। अभी हम लोगों ने पूजा किया दुर्गा का, अब वो मतलब ऐसी और वहाँ कन्या की पूजा करना, अब वो उसके अंदर तो कहीं ऐसा नहीं है कागा कि हाँ जो शाक्त संप्रदाय वाले बोले ताकि 10 से 50 वर्ष वालों को हम लोग ऐसी मातृ सत्या।
शंभू जी इतनी
तो इसके नाते सर ये चीजें जो हैं उसके अंदर हमको ये इसमें लेना चाहिए कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी माइलेज लेना चाहती है
जी,
वो मतलब उनको और उनकी ड्यूटी है क्या कि ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो और सुदृढ़ हो।
शंभू जी, आपकी बात कार्यक्रम में शामिल हुई, हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत संक्षेप में मैं श्रोताओं से गुजारिश करूंगा कि कम शब्दों में संक्षेप में गागर में सागर भर के अपनी बात कह दें तो ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल होने का वक्त मिलेगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं।
जी मोहम्मद शफी, जम्मू कश्मीर से सर बोल रहा हूँ।
जी शफी साहब, सबरीमला मामले में क्या राय रखते हैं आप?
देखो सर, बात यह है कि जो कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो मंदिर में औरतें भी जाएंगी और मर्द भी जाएंगे, वो सही फैसला है। ये कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो डिवाइड करके वोट को लेने चाहती हैं, लिहाजा ये जो है ना ये छूत छात, ये कहाँ से आई है छूत छात, ये तो टोटल गलत है। बिल्कुल सही बात है कि औरतें भी जा सकती हैं और मर्द भी जा सकते हैं, सब अल्लाह के बंदे बने हुए हैं, सब में वही जान, सब में वही रूह है, सब में वही आस्था है, इसलिए ये जो फैसला कोर्ट ने दिया इसकी सब समर्थन करते हैं। छूत छात जो है, भेदभाव जो है, ये बिल्कुल गलत है, और हमारे देश में भेदभाव जो है ये टोटल गलत है, जो करता है वो भी गलत आदमी।
बहुत शुक्रिया शफी साहब। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले केरल से एक और आवाज हम सुनेंगे, और उससे पहले एक सवाल मैं कल्याणी जी के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, वो ये कि केरल का समाज यदि मात्र सत्तात्मक है, जो कि है जहां तक मैं जानता हूं, फिर उस समाज में महिलाओं में अपने अधिकारों को हासिल करने की उतनी प्रबल इच्छा क्यों नहीं दिखाई देती है, वो क्यों अपना हक छोड़ने के लिए तैयार हैं? उससे पहले एक प्रदर्शनकारी की आवाज हम सुनेंगे।
media and the politicians are making this. They want to change our belief. They want to destroy our culture. They want to destroy our religion.
सबरीमला में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे मीडिया और नेताओं का हाथ है जो हमारी मान्यताओं को बदलना चाहते हैं, हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। ये एक प्रदर्शनकारी थे केरल से। कल्याणी शंकर जी, आपको लगता है कि मामले को राजनीतिक रंग जानबूझ के सोच समझ के तयशुदा दिशा में दिया जा रहा है, दिया गया है?
हमारा देश में ये दुर्भाग्य है कि कोई भी चीज़ हो उसमें राजनीति आ जाता है और पॉलिटिकल पार्टीज उसी के लिए वेट करके उसी में अपना फ़ायदा कितना हो सकता है वो देख के कर रहे हैं।
ये नफ़ा नुकसान किसको होगा इस पर हम आगे चर्चा कर लेंगे। अब पुराने सवाल पे लौट रहा हूँ। केरल का समाज मात्र सत्तात्मक है लेकिन फिर भी वो अपने अधिकार को, जो संविधान से मिला हुआ अधिकार है, उसे छोड़ने के लिए तैयार है, इसे कैसे देखा जाए?
नहीं, देखिए, आपको लग रहा है कि वो संविधान में मिला हुआ अधिकार को छोड़ रहे हैं। उनका हिसाब से आप देखें तो बचपन से उनको ये सिखाया गया कि आप वो 10 साल से 50 साल तक आप नहीं जा सकते, तो वो मान के आ रहे हैं। उनका मन में अभी तक ये नहीं आया कि हमें इनको क्वेश्चन करना है, तो अभी प्रश्न बाहर से आ रहे हैं कि अंदर से तो ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं वो लोग डिवोटीज नहीं हैं, इस वजह से उनको ये ठीक लग रहा है।
यानी इस बात की संभावना अभी बची हुई है कि आने वाले समय में हो सकता है कि ये सवाल उनके मन में, खुद केरल का समाज भी ये सवाल उठा सकता है।
मैं बिल्कुल मान रही हूँ वो उठा सकता है, लेकिन अभी नहीं है। मैं 10 साल के बाद 20 साल के बाद ये प्रश्न उनका मन में उठाएगा, क्योंकि हर जनरेशन में बदलते जा रहे हैं, रिलीजन भी एवोल्यूशन होते जा रहे हैं। हिंदू धर्म से ज़्यादा फ्री रिलीजन कहीं भी नहीं होता, हो सकता है। इस वजह से उसमें भी होएगा। अभी हम लोग मान लिया कि अछूत लोग मंदिर में जा सकते हैं, ऐसे एक दिन आएगा औरत भी ये सबरीमला मंदिर में जा सकते हैं। और एक बात है कि वो सबरीमला मंदिर में नहीं जा सकते, दुनिया में जितने मंदिर हैं, इंडिया में जितना मंदिर अयप्पन का मंदिर है वहाँ तो सब जगह जा सकते हैं। ये वहाँ के लोग यही पूछ रहे हैं कि उधर जाओ नहीं, इधर क्यों आ रहे हो?
एक ही मंदिर को लेकर सारा विवाद,
बस एक ही मंदिर।
अगले श्रोता के पास चलते हैं हम। कौन है हमारे साथ इस समय?
डॉक्टर आर के गुप्ता।
गुप्ता साहब कहाँ से बोल रहे हैं?
हम आप बोल रहे हैं कानपुर घाटमपुर से बोल रहे हैं सर।
जी जी, कानपुर घाटमपुर से बोल रहे हैं। गुप्ता जी, सबरीमला मामले में आपको क्या लगता है, मामला कितना राजनीतिक है, कुछ महिलाएं क्यों बाकी महिलाओं का विरोध कर रही हैं मंदिर में जाने के लिए?
देखिए, सबरी मंदिर में सबसे विरोध का कारण मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो आज के राजनीतिक लोग हैं उसको टैच करने की कोशिश करते हैं। जो भी विपक्ष की होता है, मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा, लेकिन उनका अपना वोट बैंक पक्का हो, उनका केवल इतना स्ट्रेंथ है। राष्ट्र का क्या होगा इससे कोई मतलब नहीं। जहां तक आपने कहा केरल की जनता भी विरोध कर रही है, तो महिलाएं विरोध नहीं करती, लेकिन महिलाओं का क्या है कि वो जो है कुछ उनको लोग बरगलाते हैं, बाकी वहाँ की जो समझदार है वो विरोध इसका नहीं करेगी, जहां तक मेरा समझदारी है।
गुप्ता जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। कल्याणी शंकर जी, मैं इसी बात से बात जोड़कर आपसे ये जानना चाहूँगा, कहीं ऐसा तो नहीं है केरल में कि महिलाएं मुखौटा हैं, उनको आगे कर दिया गया है, असल में पीछे पुरुष हैं जो नहीं चाहते, वही मुख्य पुजारी हैं, वो नहीं चाहते, इसीलिए महिलाओं को आगे कर दिया गया है?
नहीं, मैं ये नहीं मानूंगी, क्योंकि महिला को, वो मैट्रियार्कल सोसाइटी है, उसमें हमेशा महिला ही आगे रहेंगे। आप कितना भी बोलो उस सोसाइटी का आप चेंज नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैं नहीं मानती हूँ आपका जो सवाल, वो मैं नहीं मानूंगी।
कुछ और श्रोता हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं इस समय, चलते हैं उनके पास। कौन श्रोता है इस समय हमारे साथ?
नमस्ते सर, राजन गुप्ता सर, प्रताप।
राजन गुप्ता कहाँ से बोल रहे हैं?
सर मोहनगंज, प्रतापगढ़, यूपी।
प्रतापगढ़ से गुप्ता जी, राजन गुप्ता जी, सबरीमला शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या छवि उभरती है?
सर यही छवि सुने, राजनीतिक पार्टियां तो अपने फायदे के लिए सब कुछ करती हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो ये कहीं जायज नहीं है कि मतलब कहीं किसी को आने जाने से रोका जाए। और ईश्वर प्रदत्त चीज है सर वो महिलाएं, अभी हम महिला से मतलब दुर्गा जी की हम लोग पूजा करके उठे हैं और एक तरफ हम महिलाओं का विरोध कर रहे हैं, ये मतलब किस तरीके का न्याय है? लोग बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं? जैसे छोटी बच्ची बोल रही थी शुरू शुरू में कि हमारे यहाँ 99% लोग इसके खिलाफ हैं, तो अगर घर वाले या सरकार या जो भी हो गलत शिक्षाएं प्रोवाइड की जाएंगी या परंपराएं गलत सिखाई जाएंगी तो कहां तक उचित है सर इस देश के लिए?
सवाल बड़ा भारी है इनका। राजनीति नेता इनको एक तरफ रख भी दिया जाए, हमारा अपना समाज कहां तक तैयार है इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए और खुले दिमाग से नई चीज़ों को अपनाने के लिए?
समाज तो तैयार है, लेकिन आप जितना जल्दी करना चाहते हैं उतना जल्दी नहीं है। ये होगा, बहुत देर से होगा, लेकिन होगा सही, क्योंकि जनरेशन का जनरेशन तो बदलते जा रहे हैं। अभी और 2-3 जनरेशन के बाद ये सवाल ही नहीं उठेगा, तब तक औरतों को तो जो हक चाहिए वो मिल जाएगा।
देखना होगा और कितने दशक लगेंगे, जैसा कि कल्याणी शंकर कह रही हैं। अगले श्रोता के पास चलते हैं इस बीच हम। जी कौन है हमारे साथ इस समय? हेलो, नहीं संपर्क नहीं हो पा रहा है, अगले कॉलर से संपर्क यदि करा सकें।
हेलो
जी, कौन बोल रहे हैं?
मुरैना मध्य प्रदेश से अरबलाज सिंह तोमर।
तोमर साहब, आपके पीछे रेडियो चल रहा है, उसकी आवाज गूंज रही है, उसको बंद कर दें।
जी बंद कर दिया,
अब रखें अपनी बात।
यद्यपि मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है और उसका सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है, किंतु उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। कानून बनाना व्यवस्थापिका का कार्य न कि न्यायपालिका का। सुप्रीम कोर्ट कानून की व्याख्या कर सकता है, क्योंकि इस तरह का लिंग भेद उचित नहीं है, लेकिन जब महिला हित की बात की जाती है तो 3 तलाक के मुद्दे पर क्यों बवाल खड़ा किया जाता है? वहाँ सुप्रीम कोर्ट खामोश क्यों दिखाई देता है?
कल्याणी शंकर जी, सुना आपने श्रोता को?
ट्रिपल तलाक को क्यों कर रहे हैं, इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसमें भी तो उनका जेंडर जस्टिस तो किया है, ऐसी नहीं है कि नहीं किया है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन का क्या होता वो देखना। उधर भी देखिए, मुसलमान का जो भी धर्म का देखने वाला है वो लोग तो इसके लिए सोच रहे हैं ना। तो ऐसा थोड़ी होता है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई बोल दिया सब कुछ हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन देखेंगे उधर भी कितना होता है, अभी बहुत जल्दी है उसके बोलने के लिए। मेरा हिसाब से आपका जितना श्रोता अभी तक बोल रहे थे, इसको देख के एक तो कोई डेमोक्रेसी के बारे में बोल रहे हैं, दूसरा है तो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बोल रहे हैं। तो कुल मिला के सभी लोगों का एक ही है कि पॉलिटिक्स को अलग रखो, वो सबको करना भी चाहिए। और ये इसके लिए हम देखेंगे कितना होता है, मेरा हिसाब से तो होगा ही नहीं है।
अच्छा कल्याणी जी, चर्चा केरल की राजनीति की भी कर लें चलते चलते, मुद्दा सियासी बन चुका है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है कौन सा एक राजनीतिक दल है या दो राजनीतिक दल हैं जो इस मुद्दे को सबसे ज़्यादा भुना रहे हैं केरल में हिंदुत्व के नाम पर? जी हाँ,
हिंदू का नाम पर बीजेपी कर रही है, और उससे ज़्यादा बीजेपी और शिवसेना दोनों कर रही है।
और क्या इससे उसे केरल में फ़ायदा होगा?
मुझे नहीं लग रहा है कि फ़ायदा होगा, क्योंकि केरल में तो वो बीजेपी अपना पैर जुटाने के लिए बहुत सालों से कोशिश कर रही है, लेकिन वहाँ तो हार्ट कम्युनल फीलिंग वहाँ नहीं होता है। इस वजह से इसको लेके भी इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा मुझे नहीं लग रहा है।
और क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि लगातार कोशिशें हो रही हैं कि महिलाएं पहुंच जाएं सबरीमला मंदिर तक, प्रवेश कर जाएं, कुछ आगे लगता है आपको? अभी घटनाक्रम इसी तरह जारी रहेगा या बात कोर्ट में आके कुछ दिशा बदल सकती है?
कोर्ट में आके देखिए, कोर्ट में शायद रिव्यू पिटिशन को मान लिया और अपना डिसीशन को रिवाइज कर दिया, उसमें भी एक जज तो इंदु मल्होत्रा ने पहले से कह दिया कि इसका देखना चाहिए, तो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, कोर्ट इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इंदु मल्होत्रा ने वही बोला है।
ये जो
तो,
जज इंदु मल्होत्रा वाली बात आपने निकाली जिन्होंने कहा था कि दखल ना करते तो बेहतर होता,
सिंगल औरत था, महिला थी उसमें।
जी हाँ जी हाँ, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस नजरिए को आप?
थोड़े लोग तो उनको जो बोल रहे हैं वो महत्वपूर्ण ही मानते हैं, वो एक व्यू है, उसके सपोर्ट तो बहुत लोग दे रहे हैं।
क्या रिव्यू पिटिशन जब फाइल होगी तो अब इस व्यू को कुछ ज्यादा तरजीह मिल सकती है?
हो भी सकता है,
जिस तरह की घटनाएं नजर आई हैं
हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता है। और आपने देखा होगा, आपका श्रोता जितने लोग आए थे कितने महिला थे उसमें, सिर्फ एक बच्ची के अलावा कोई नहीं थे। तो औरतों को तो शायद इसमें दिलचस्पी नहीं होगी मेरा हिसाब से, तो अदरवाइज इसमें तो BBC में नहीं आए तो और कहां जाएंगे।
ये बात भी सही है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो फोन जरूर लगा रही होंगी, और ये अलग बात है कि उनके फोन कॉल्स कार्यक्रम में लग नहीं पाए, वरना हमारी महिला श्रोताएं फोन लगाने से कभी पीछे नहीं हटती हैं। BBC इंडिया बोल में आज इतना ही, बहुत बहुत स्वागत उन आपका कल्याणी जी, आप आई और शुक्रिया बहुत बहुत, और माफ़ी चाहेंगे उन तमाम श्रोताओं से जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए। अगले हफ्ते फिर एक ज्वलंत विषय पर चर्चा के साथ इंडिया बोल में हाजिर होंगे। एक हफ्ते की बात है, अगले शनिवार फिर आएगा इंडिया बोल। फिलहाल संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।